अध्याय 31 पति पत्नी में परस्पर संबंध। जो विवाह को परमेश्वर की व्यवस्था द्वारा सुरक्षित एवं उसके द्वारा स्थापित एक पवित्र विधि समझते हैं, वे विवेक बुद्धि की अनुज्ञाओं के नियंत्रण में रहेंगे। यीशु मसीह ने मनुष्य के किसी भी वर्ग को अविवाहित जीवन के लिए बाध्य नहीं किया। वह विवाह विधि का अंत करने नहीं आया, परंतु उसकी प्रारंभिक पवित्रता का समर्थन करके उसे प्रतिष्ठित करने आया था। जिस कौटुंबिक संबंध में पवित्र निस्वार्थ प्रेम का साम्राज्य होगा, उस पर मसीह की आनंदमय दृष्टि बनी रहेगी। विवाह वैधानिक एवं पवित्र है। खाने पीने शादी विवाह करने में स्वयं कोई पाप नहीं है। नूह के दिनों में विवाह करना नियमानुकूल था, आज भी विवाह उचित है। यदि वह वस्तु जो नियमानुकूल है उसमें पाप को कोई अवसर न दिया जाकर उसका सदुपयोग किया जावे। परंतु नूह के समय में लोग परमेश्वर की अगुवाई तथा परामर्श प्राप्त किए बिना विवाह करने लगे थे। वास्तव में जीवन के समस्त संबंध अस्थायी हैं। इस कारण उनका हमारे वचन एवं कार्य पर गुणकारी प्रभाव पड़ना चाहिए। उचित प्रयोग किए जाने पर जो प्रेम वैधानिक एवं पवित्र था नूह के समय में, उसी का बहुल्यता व अत्यंतता के कारण विवाह परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरा। इस युग में भी संसार में ऐसे अनेकों व्यक्ति मिलेंगे जो विवाह के विचारों एवं विवाह संबंधों में लीन होकर अपनी आत्माओं का सर्वनाश कर रहे हैं। वैवाहिक संबंध पवित्र है। प्राचीन काल में कुप्रथाओं का समावेश होने से विवाह दूषित हो गया था। इस मर्यादाहीन युग में भी इसमें कई दुराचारों का सम्मिश्रण होकर दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण ये अपराध बनकर अंतिम दिनों की उपमा बन गया है। यदि विवाह का पवित्र अभिप्राय और महत्व समझ लिया जाए तो वो परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहरेगा, जिसका फल दोनों दलों के लिए आनंद और परमेश्वर की महिमा का कारण होगा। विवाह के स्वाधिकार। मसीह धर्मावलंबियों के विवाह संबंधी स्वाधिकारों के नतीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसका पवित्र सिद्धांत वैवाहिक जीवन संबंधी प्रत्येक कार्य का आधार होना चाहिए। माता पिताओं ने बहुधा विवाह संबंधी इन स्वाधिकारों को दुरुपयोग करके और निरंतर उनमें रत रहकर पाश्विक मनोवेगों को प्रोत्साहन दिया है। कौटुंबिक संबंध के स्वाधिकार एवं उसकी आत्मीयता। शीर्षक लेख में मिसेज व्हाइट ने अपने विचार प्रकट किए हैं। किसी वैधानिक अथवा नियमित वस्तु की उचित सीमा को उल्लंघन करना महापाप है। अनेकों माता पिता वैवाहिक जीवन संबंधी जो ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है वह नहीं करते हैं। वे इस बात में अपनी सुरक्षा भी नहीं करते कि कहीं अवसर पाकर शैतान उनके मन एवं जीवन पर अपना प्रभुत्व न जमा ले। वे इस बात से भी सतर्क नहीं रहते कि परमेश्वर चाहता है कि उनका वैवाहिक जीवन संयमी हो। बहुत कम ये समझते हैं कि अपनी लालसाओं को वश में रखना एक धार्मिक कर्तव्य है। वे अपनी ही इच्छा से वैवाहिक संबंध में प्रविष्ट हुए हैं और इसी कारण उनका तर्क कि विवाह के द्वारा उनकी निम्न कामनाओं की तृप्ति की आकांक्षा न्यायसंगत है। वे भी जो धार्मिक होने का दम भरते हैं अपने लालसा युक्त मनोवेगों को निरंकुश छोड़ हैं। वे भूल जाते हैं कि ऐसा करने से वे अपने जीवन को निर्बल बनाते हैं अथवा इस प्रकार उनकी अनमोल शक्ति के क्षय किए जाने का लेखा परमेश्वर लेगा। आत्मा त्याग एवं संयम धारण कीजिए। क्या ही भला होता कि मैं लोगों को समझा सकती कि अपनी मानसिक एवं शारीरिक अंग प्रत्यंगों को अपने सृजनहार परमेश्वर की सिद्ध सेवा निमित्त सर्वश्रेष्ठ हालत में रखें। मसीही पत्नी अपने वचन एवं कर्म से अपने पति की पाश्विक लालसा को न उभारें। अनेकों के पास तो इस ओर अपनी शक्ति को व्यय करने की क्षमता ही नहीं है। अपनी युवावस्था में अपने मस्तिष्क को दुर्बल बना दिए है, अपनी पाश्विक कामना पूर्ति के द्वारा शरीर को जीर्ण शीर्ण कर दिए है। उनके वैवाहिक जीवन में स्वयं आत्मत्याग और संयम सांकेतिक शब्द होने चाहिए। अपनी आत्मा को शुद्ध और शरीर को स्वस्थ रखना हमारे लिए परमेश्वर के प्रति एक गंभीर कर्तव्य है, जिससे हम मानव जाति को लाभ पहुंचाते हुए परमेश्वर की सिद्ध सेवा कर सकें। प्रेरित ने चेतावनी स्वरूप निम्नलिखित शब्द कहे हैं, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। आगे वो हमसे विनती करता है, प्रत्येक जन जो स्वामी बनना चाहता है सब बातों में संयमी हो। वे जो मसीही कहलाने का दावा करते हैं उनसे वो कहता है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाऊं। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पवित्र प्रेम के द्वारा मनुष्य अपनी पत्नी को लालसा पूर्ति का साधन बनाने के लिए प्रेरित नहीं करता। पाश्विक कामुकता ही मनुष्य को कामतुर बनाती है। प्रेरित द्वारा दर्शाए हुए आदर्श प्रेम का व्यावहारिक प्रदर्शन कितने कम लोग करते हैं। उसने कहा, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसे शुद्ध करके, अशुद्ध करके नहीं, पवित्र बनाए कि उसमें न कलंक न झुर्री हो। वैवाहिक संबंध में प्रेम का यही गुण परमेश्वर के समक्ष पवित्र समझा जाता है। प्रेम एक पवित्र और शुद्ध सिद्धांत है, परंतु लालसामय कामुकता पर न हो अंकुश लगाया जा सकता है, न तर्क उसे वश में कर सकता है। वो कारण एवं परिणाम संबंध में तर्क नहीं करेगा, वो परिणाम की ओर अंधा रहेगा। आत्मा नियंत्रण को क्षीण करने के लिए शैतान का प्रयत्न। वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने वालों की पवित्रता के स्तर और उनके आत्मनियंत्रण को दुर्बल करने में शैतान सर्वदा प्रयत्नशील है। वह जानता है कि कामुकता की प्रचुरता के फलस्वरूप मनुष्य का नैतिक बल निरंतर गिरता जाता है, आत्मिक उन्नति के प्रति वह उदासीन हो जाता है। शैतान जानता है कि माता पिता की संतान को उसके घृणित सांचे में ढालने के लिए अन्य कोई उपयुक्त साधन नहीं है। वह जानता है ऐसा करने से वह माता पिता के चरित्र पर प्रहार करने की अपेक्षा संतान के चरित्र को आसानी से अपनी इच्छानुसार ढाल सकेगा। पुरुष स्त्रियों, एक दिन आप सीख लेंगे कि काम तृप्ति का परिणाम क्या है। निम्न लालसाओं की पूर्ति जिस प्रकार स्त्री पुरुष के अनैतिक संबंध में विद्यमान है, उसी प्रकार उनका वैवाहिक जीवन में भी पाया जाना संभव है। निम्न कामुक भावनाओं को निरंकुश छोड़ने का क्या परिणाम होता है। शयन कक्ष, जहां परमेश्वर के दूत का सभापतित्व होना चाहिए, क्या अपवित्र कार्यों द्वारा अपवित्र किया जा रहा है। जहां लज्जात्मक पाश्विक साम्राज्य है, वहां शरीर का विनाश हो जाता है। घृणित व्यवहार के परिणाम स्वरूप घृणित रोग हो जाते हैं। जो देह परमेश्वर ने आशीष स्वरूप प्रदान की थी वह शाप बन जाती है। दाम्पत्य असंयम भक्ति भाव के प्रति प्रेम का विनाशक है। इसके द्वारा मस्तिष्क के उस तत्व का क्षय होता है जो दैहिक पोषण के लिए बहुमूल्य है। इससे दैहिक बल जाता रहता है। कोई पत्नी इस आत्मविनाशक कार्य में अपने पति को सहयोग न दे। बुद्धिमती पत्नी जो अपने पति से प्रेम करती हो कदापि यह न करेगी। पाश्विक लालसाओं की पूर्ति के लिए जो जो अवसर दिया जावे वे प्रबल होकर मनुष्य को अपनी ओर अत्यधिक आकर्षित करती जाएंगी। परमेश्वर का भय मानने वाले पुरुष स्त्रियां अपने आप के प्रति सजग हो जावे। असंयम के साथ इस दिशा में प्रगतिशील होकर कई नाम मात्र के मसीही स्नायु या मस्तिष्क के पक्षाघात के शिकार हो गए हैं। पति विचारशील हो। पति सावधान, सतर्क, नियमबद्ध, विश्वासी एवं करुणामय हो। वे प्रेम एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करें। यदि वे मसीह के वचनों की पूर्ति के इच्छुक हों तो उनका प्रेम निम्न कोटि का संसारी एवं इंद्रियवश नहीं होगा। परिणाम स्वरूप वे अपनी निज देह नाश करके अपनी ही निर्बलता एवं रोग के कारण होंगे। जब वे ये आशा करते हैं कि उनकी पत्नी पूर्ण रूप से उनके अधीन रहे तो वे जो स्वयं इन तुच्छ अनुरागों की पूर्ति में लीन नहीं होंगे। मसीही को आदरणीय चरित्र, पवित्र हृदय एवं आदर्श मन आदि गुणों से विभूषित होना चाहिए। जब ये गुण पति के जीवन में यथास्थान प्राप्त कर लें तो इनका प्रकटीकरण वैवाहिक जीवन में होना अवश्य है। यदि उसमें मसीह का मन है तो वो अपनी देह का विनाशक न होकर विनम्र प्रेम से परिपूर्ण होगा, जिसके द्वारा वो मसीह के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकेगा। जब किसी व्यक्ति की पत्नी उसकी दुराचारी लालसाओं की पूर्ति के लिए उसकी दासी बन जावे तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को सच्चे दिल से प्रेम नहीं कर सकता है। अपने अनिवारक सहनशील आज्ञानुकूलता के कारण पति की दृष्टि में अपना जो मूल्य था वह खो देती है। वह उस एक उच्च आदर्श से पतन की ओर प्रगतिशील देखता है। उसके मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि जिस प्रकार अपनी पत्नी ने उसके लिए अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसी प्रकार वह किसी अन्य को भी वशीभूत हो सकेगी। वह उसकी पतिव्रत्य एवं दृढ़ता पर संदेह करके ऊप कर अपनी नारकी लालसाओं की उत्तेजना एवं पूर्ति निमित्त नए साधनों की खोज में अग्रसर होता है। इस प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था की अवहेलना की जाती है। ऐसे व्यक्ति पशु से भी निकृष्ट हैं। वे मानव भेष में दानव हैं। वे पवित्र प्रेम के आदर्शनीय सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। पत्नी के मन में भी पति के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। वह संदेह करने लगती है कि अवसर आने पर उसका पति दूसरी स्त्री के लिए अपने आप को सौंप देगा। वह जानती है कि पति पर से विवेक तथा परमेश्वर का भय का नियंत्रण जाता रहा लालसापूर्ण आवेगों के आध्यात्मिक बना सकती है, जिसके फलस्वरूप वे अपनी लालसाओं द्वारा संसार की सड़ाहट में पड़ने के बदले परस्पर ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो सकती हैं, द्वारा ये सब पवित्र बंधन भंग हो जाते हैं। पति के जीवन में ईश्वरीय स्वरूप के जो सद्गुण थे, अब नीच पाश्विक लालसाओं के दास बन जाते हैं। जब अनुचित मांग की जाती है, जब इस बात का निर्णय करना है कि क्या पत्नी को अपने पति की मांग की पूर्ति करनी अवश्य है, विशेषकर उस समय जब उसे विदित है कि पति बुरी लालसाओं के वश में है, और उस समय जबकि अपना विवेक यह कहता है कि ऐसा करने से उस देह का नाश होता है जिसे परमेश्वर ने दिया है कि पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान निमित्त उसकी सुरक्षा की जावे। जो प्रेम पत्नी के स्वास्थ्य और जीवन का हनन करके पति की पाश्विक लालसाओं की पूर्ति करने की अग्रसरी करता है, वो सच्चा और शुद्ध प्रेम नहीं है। यदि पत्नी में वास्तविक प्रेम और सद्बुद्धि है, तो वो अपने पति के मन को लालसापूर्ण प्रवृत्तियों से हटाकर मनोरंजक आध्यात्मिक साधनों द्वारा आत्मिक विषयों की ओर आकर्षित करेगी। वो अपने पति को विनम्र भाव से आग्रह करेगी कि अनुचित रूप में विषय वासनापूर्ण लालसाओं की पूर्ति करके वो अपने शरीर का निरादर नहीं करेगी। हो सकता है कि उसके इस कथन पर पति क्रोधित भी हो जावे। वो बड़े विनम्र और दयालु भाव से अपने पति को स्मरण दिलाएगी कि उसके समस्त व्यक्तित्व पर प्रथम अधिकार परमेश्वर का है। वो इस अधिकार की अवहेलना न करेगी, क्योंकि न्याय के दिन वो इससे प्रत्युत्तर की उत्तरदायी होगी। यदि वह अपने प्रेम के स्तर को श्रेष्ठ बनाए रखे, जिसके फलस्वरूप पवित्रता एवं आदर के साथ उसके स्त्रीत्व की मर्यादा की निर्मलता की सुरक्षा हो सके, तो वह अपने न्याय युक्त प्रभाव के द्वारा पति को पवित्र करते हुए अपने सेवा कार्य को पूरा करेगी। इस प्रकार वह स्वयं अपनी एवं अपने पति दोनों की रक्षा करके दुगनी सेवा करेगी। इस प्रकार के नाजुक और कठिन कार्य निमित्त बुद्धि और धीरज के साथ ही साथ नैतिक साहस की बड़ी आवश्यकता है। सामर्थ्य और अनुग्रह की प्राप्ति प्रार्थना के द्वारा हो सकती है। हृदय का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत प्रेम ही है। केवल परमेश्वर और पति से प्रेम ही सत्य व्यवहार के आधार हो सकते हैं। जब पत्नी सारी बातों में पति का इच्छापात्र बनकर तथा अपने विवेक मर्यादा एवं व्यक्तित्व की आहुति देकर अपनी देह तथा मस्तिष्क को उसके अधीन कर चुकती है, तो वह अपने पति के उत्थानार्थ उस पर जबरदस्त प्रभाव डालने का सुअवसर को सदा के लिए खो बैठती है। अपने अचल स्वभाव के द्वारा वह पति के हठी स्वभाव को नम्र बना सकती है। अपने पवित्र प्रभाव के द्वारा पति को प्रभावित करके उसे कामाभिलाषी होने के बदले वह हृदय जिसका अनुग्रह द्वारा परिवर्तन नहीं हुआ, इंद्रियवश कामनाओं में फंसकर निम्न कोटि का बन जाता है, ऐसे मन को ऊंचे स्तर पर लाने के लिए प्रभाव अति महत्वपूर्ण हो सकता है। जब किसी पति के प्रेम का आधार पाश्विक लालसाएं ही हैं, अथवा वे ही उसके व्यवहार पर अपना प्रभुत्व जमाती हैं, तब पत्नी यदि उनकी पूर्ति में अपना सहयोग दे, तो वो अपने ऊंचे आदर्श को त्यागती है। ऐसा करने से वो अपने पति के जीवन को पवित्र बनाने वाला प्रभाव न डालकर परमेश्वर को भी अप्रसन्न करती है। यदि उसकी ये भावना हो कि ये उसका कर्तव्य है कि वो बिना प्रतिरोध अपने पति की विलासपूर्ण लालसाओं को तृप्त करती है, तो उसने परमेश्वर और पति के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं पहचाना है। तुम दाम देके मोल लिए गए हो। निम्न कोटि की अभिलाषाएं देह में घर कर लेती हैं, जिसके द्वारा वे कार्य करती हैं। शारीरिक अभिलाषाएं निम्न पतित प्रकृति का आलिंगन करती हैं। शरीर स्वयं परमेश्वर की इच्छा के प्रतिकूल कार्य नहीं कर सकता। हमें आदेश दिया गया है कि शरीर को उसकी रागों और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दें। हम इसे कैसे करें? क्या देह को दुख देवें? नहीं, पर पाप करने के प्रलोभन को मार डालें, भ्रष्ट विचार को निकाल डालें, प्रत्येक विचार को यीशु मसीह की दास्ता में लाइए, पार्श्विक प्रवृत्तियों को आत्मा की उच्च शक्तियों के प्रभुत्व को स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम का आधिपत्य होना जरूरी है। मसीह को अविभाजित सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए। हमारी देह उसकी मोल ली हुई संपत्ति जैसी समझना चाहिए। देह की इंद्रियों को धार्मिकता के हथियार बनना चाहिए।